ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने में लोक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड युगांधरा पवार झा और अनुराग किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
भारत संभावनाओं को संभव बनाने वाले इस देश में लगातार बढ़ती आबादी कई परेशानियों का सबब बनती जा रही है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में न्यायालयों पर बोझ हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2023 तक देश के सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालतों में 5,08,85,856 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। एक और रिसर्च के आंकड़े के अनुसार देश की 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। इन सब से निपटने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने और मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए एक बेहतरीन पहल है लोक अदालत। लोक अदालत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली। ये एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं, उन दो पक्षों में समझौता किया जाता है या सौहार्दपूर्ण तरीके से इसे निपटाया जाता है। लोक अदालत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दो विशेष मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड युगांधरा पवार झा और अनुराग किशोर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आनंद जी।
धन्यवाद आनंद जी।
अनुराग सर, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं और हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग भी ये समझने की कोशिश करेगा कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये जो लोक अदालतें हैं ये कैसे अलग हैं।
देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोक अदालत बेसिकली है क्या। लोक अदालत, जैसे अभी आपने एक संक्षेप में परिचय दिया कि यह जो मैकेनिज्म है ये एक वैकल्पिक समाधान की युक्ति है और ये कोर्ट में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं या डिस्प्यूट अभी अराइज हो रहे हैं उनके सेटलमेंट के लिए और उसमें कोई निर्णय पास हो जाए उसको देखते हुए ये लोक अदालत की जाती है। इसमें जो फंडामेंटल चीज है उसमें ये है कि ये नैसर्गिक न्याय का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। अब बात आती है जैसे जो अभी आपने पूछा कि ये कैसे अलग अलग है। बेसिकली ये लोक अदालत जितनी भी की जाती हैं वह विभिन्न कोर्टों में ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ये जो लोक अदालत है ये बेसिकली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अब इसमें मसले जहां जहां पेंडिंग हैं वो लोक अदालत में निर्णय किए जा सकते हैं और उसमें संभावना है कि उसमें लोक अदालत द्वारा जो है उसमें कोई निर्णय पास हो जाए तो उस मुकदमे को लोक अदालत में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न अदालतों की अपनी विभिन्न लोक अदालतें होती हैं और इसमें जो भी निर्णय होता है वह आपसी समझौते से या कोर्ट के पर्सुएंस से वो इसमें निर्णय दिया जाता है।
जी युगांधरा मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो लोक अदालत में मामलों को निपटाया जाता है वो किस तरह के मामले होते हैं। क्या सभी मामले लोक अदालत में रजिस्टर्ड या फाइल किए जा सकते हैं या कुछ चुनिंदा तरह के मामले होते हैं जिसका निपटान लोक अदालत में होता है।
जी आनंद जी, जैसे अभी अनुराग जी ने भी बताया, लोक अदालत तालुका लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल और राष्ट्रीय स्तर, ऐसे अलग अलग स्तर पे किया जाता है और इसमें दो तरह के केसेस जा सकते हैं। एक जो न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, ऑलरेडी पेंडिंग है, और दूसरे ऐसे मामले जो न्यायालय में फाइल होने वाले हैं जिसको हम प्री लिटिगेशन मीडिएशन बोलते हैं। वो तो ऐसे दो तरह के मामले होते हैं और उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स होते हैं या पारिवारिक जो विवाद होते हैं, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, लैंड डिस्प्यूट, बहुत सारे हमारे ऐसे विवाद हैं जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं तो ऐसे जा सकते हैं। कुछ है इंश्योरेंस रिलेटेड, कंपनीज के हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किए हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनीज को भी बुलाया जाता है इन लोक अदालतों में बोलने के लिए। उसके अलावा होते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जैसे बहुत सारे हमारे व्यापार रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं वो भी जा सकते हैं और वो भी इनपे भी लोक अदालत में सुनवाई होती है और वो भी सुलझ जाते हैं। तो ये एक स्वैच्छिक भागीदारी का माध्यम है जिससे दोनों पक्ष आकर के आपसी समझौता करके निशुल्क और जल्दी समाधान करने का जरिया, जिसको ये कह सकते हैं।
अनुराग सर, जैसा कि युगांधरा मैम ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लोक अदालत में जाते हैं, जो श्रोता आकाशवाणी का ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं उनके जहन में एक सवाल बरबस ही उठ रहा होगा कि क्या क्रिमिनल मामले लोक अदालत में नहीं जाते, इस पर क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
क्रिमिनल मामलों में दो तरीके के मामले होते हैं। एक मामला जो कंपाउंडेबल होता है, कंपाउंडेबल मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है और वो किसी तरीके से क्रिमिनल मामले में जो है वो फॉल कर रहा है, लेकिन वह सीआरपीसी में दिया हुआ है जो अब सुरक्षा नागरिक संहिता, तो वो अब जो चेंज हो गई है उसमें जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो कि आपस में पार्टी अगर चाहे तो वह सेटल कर सकती है, तो वो मामले निश्चित तौर पे लोक अदालत में दिए जा सकते हैं। जिसमें कि आपका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि चेक बाउंसिंग का केस है, तो चेक बाउंसिंग के केसेस बहुत सारे होते हैं, चूंकि बहुत सारे चेक बाउंस होते रहते हैं, तो उस तरीके के मामले निसंदेह लोक अदालत में लिए जा सकते हैं, या इस तरीके के मामले जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो निश्चित तौर पे लिए जा सकते हैं। बाकी ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल नहीं है वो नहीं लिए जा सकते हैं
जी।
और जैसा कि अभी युगांधरा मैडम ने बताया कि इसमें मेनली जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड मुकदमे जो कि बहुत सारे होते हैं, उस तरीके के मुकदमे और इंश्योरेंसेस के मुकदमे, लेबर डिस्प्यूट या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसा कि अभी मैडम ने बताया, तो इस तरीके के सारे मामले जो है वह लोक अदालत में लिए जा सकते हैं।
युगांधरा मैम, बहुत सारे लोग जो लोक अदालत में अपने मामलों को लेकर जाना चाहते हैं या फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक होकर जाने की सोचेंगे, उनको थोड़ी एक प्रक्रिया बताइए थोड़े संक्षेप में, कि जैसे कि पहले से हमारे जहन में एक बात होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वहां हमें अपने एक लॉयर के साथ जाना होगा, केस फाइल करना होता है, उसके बाद तारीखें मिलती हैं और उसके बाद सुनवाई होती है और फिर उस हिसाब से निर्णय आता है। लोक अदालत में क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है? एक साधारण आदमी अगर अपने मामले को लोक अदालत में लेकर जाना चाहता है तो उन्हें किस प्रक्रियाओं से गुजरना होगा?
आनंद जी, इसकी प्रक्रिया बहुत ही इनफॉर्मल होती है। इसमें जैसे कोर्ट में होता है कि केस फाइल करना है, आपको विवाद करना है, तर्क लड़ाना है, ये सब कुछ नहीं होता है। आपका ऑलरेडी जो लंबित मामला है, आपके वकील को उसकी जानकारी होती है कि ये नोटिस दी जाती है कि ऐसा ऐसा लोक अदालत होने वाला है, और आपका विवाद आप उसमें एक फॉर्म से उसमें दे सकते हैं कि ये चलाना है हमको लोक अदालत में। दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी की सहमति नहीं है तो वो लोक अदालत में सुलझा नहीं जा सकता। उसके बाद वहां पे लोक अदालत में जो मेंबर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स, ये सब भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो ये केस दिखाते हैं। बहुत सारे टाइम्स क्या होता है ना, ये सारे केसेस एक साथ लिए जाते हैं। जैसे अगर मोटर व्हीकल्स का हम कहें या इंश्योरेंस का कहे, तो एक डिसीजन किया जाता है कि इस लेवल के जो मामले हैं, जैसे आपका अगर एक्सीडेंट का क्लेम है तो ये एक्सीडेंट क्लेम में हम इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, तो उस कैटेगरी में जो वो फॉल करते हैं, जैसे वर्किंग क्लास मेल है या वर्किंग फीमेल है, तो उन सब के एक साथ निपटाए जाते हैं मामले। कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं लिखा गया है इसमें एकदम इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है। आप कोई भी केस लेके जा सकते हैं और फॉर्म फिल करके जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आता है, आप उस दिन जाकर के जो बैठे होते हैं वो सुनकर तुरंत उसमें दोनों पार्टीज को पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, बहुत इनफॉर्मल में है, और वो कोई वहां पे तर्क लड़ाया नहीं जाता कानून पे, और उसके बाद वो खत्म किया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगी वो है कि इस मामलों के अगेंस्ट कोई अपील नहीं फाइल कर सकता। इसमें जो भी समझौता किया जाएगा वो फाइनल होता है, उसके आगे कोई भी अपील नहीं जा सकती किसी भी कोर्ट में। इसीलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी विवाद सुलझाने का।
अनुराग सर, जैसा कि मैडम ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह की प्रक्रिया होती है और इस पर अपील आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों पक्ष मान जाइए कि पहले सहमत थे, उन्होंने लोक अदालत में मामला फाइल किया, उस पर मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई, प्रक्रिया चली, लेकिन वहां पर सहमति नहीं बन पाई, इसके बाद दोनों पक्षों के पास क्या विकल्प है?
जैसा मैडम ने बताया कि सुनने के बाद, दोनों पक्षों के राय लेने के बाद ही इसमें कोई ऑर्डर पास होता है, लेकिन एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तब वह एक फाइनल रूप ले लेता है, जिसके अगेंस्ट जैसा कि मैडम ने बताया कि कोई अपील लाइन नहीं करती है। अपील जो है वो बहुत ही अपील क्या वो उसको बहुत ही मुश्किल से चैलेंज किया जा सकता है, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड है कि मान लीजिए कि वहां पे वो ये कहता है कि हम वहां नहीं थे या हमसे धोखे से करा लिया गया, उसके लिए बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड है। लेकिन जहां तक सवाल उठ रहा है कि ये जो ऑर्डर पास होता है ये आपसी सहमति से ही होता है, और अगर आपसी सहमति नहीं बन रही तो जो लिटिगेंट्स हैं उनके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि ये वापस कोर्ट में चले जाएं और वापस कोर्ट की प्रक्रिया को वो अपना लें। लेकिन लोक अदालत में जो भी आदेश पारित होते हैं वह दोनों पार्टियों के सहमति से ही पास होते हैं, तो इसलिए यह प्रक्रिया जो बनाई गई है वो यही कि आपसी सुलह समझौते से तेजी से मामला निपटाया जा सके। लेकिन अगर वहां पे डिस्प्यूट है और कोई पार्टी नहीं राजी हो रही है तब इस केस में वापस कोर्ट में अपना वो लिटिगेशन कैरी ऑन कर सकते हैं।
युगांधरा मैम, आपने अपने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये निःशुल्क प्रणाली है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताएं हमारे श्रोताओं के लिए कि मान जाइए किसी ने हाईकोर्ट में अपना केस फाइल किया है, वहां पर उसने फी सबमिट कर दी है और उसके बाद अब वो लोक अदालत में आए हैं, तो जो फी सबमिट की थी उन्होंने हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो पैसा वापस हो जाता है?
जी हाँ, इसमें जब कोई मामला लंबित है और वो अगर लोक अदालत से उसका समाधान हो जाता है तो कोर्ट फी का रिफंड हो जाता है और वो वापस की जाती है। आपके पैसे जो खर्च होंगे वो वकील की फीस होती है, जो वकील की फीस ऑलरेडी दी गई है तो वो वापस नहीं ले सकते हैं, मगर अगर कोर्ट फी कोई दी है, कोर्ट में जब भी कोई आप मामला दर्ज करते हैं तो आपको कोर्ट फी देनी पड़ती है। अगर लोक अदालत से उसका समाधान उस मैटर का होता है कोई भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेशल लोक अदालत रखी है, तो अगर उसमें भी हो जाएगा तो कोर्ट फी आपकी रिफंड हो जाएगी। आपको एक एप्लीकेशन आपके वकील के थ्रू लगानी पड़ेगी और वो रिफंड हो जाएगी।
अनुराग सर, जैसा कि युगांधरा मैम बता रही थी उसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें विशेष होने वाला है और किस तरह की तैयारी है? चूंकि आप दोनों सुप्रीम कोर्ट में ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो थोड़ा इस सप्ताह के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस समय वह काफी एक्टिव हैं और वह इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि तेजी से मुकदमे निस्तारित हों। लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बार आयोजित की है 75वें वर्षगांठ पे, वह पूरे देश भर में हो रही है। जितने भी लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिस जिस स्टेट से रिलेटेड हैं, उस सारे स्टेट्स में वो स्पेशल डायरेक्शंस गए हैं और वहां पे निश्चित तारीखें दी गई हैं, सारे लिटिगेंट्स को नोटिसेस जारी हो चुके हैं और वहां पे विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि जितनी भी पार्टीज हैं वो वहां पे जाके इस बात को देखेंगी कि क्या संभावना है उनकी लोक अदालत द्वारा निस्तारित किया जा सकता है या नहीं। तो यह एक बहुत ही विशेष आयोजन है जो कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
आनंद जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म किए है 5 सीनियर जजेस की और उनके गाइडेंस के अंडर ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी इन्वॉल्व है और इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया है वो है टेक्नोलॉजी को लेकर के चलने का। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी लिटिगेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल के आपके कोर्ट में जाकर के वहां से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे अपियर हो सकते हैं। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, जो आ रहे हैं वो तो खुद ही वहां पे अपियर हो सकते हैं, मगर जो नहीं आ सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल अपने कोर्ट में जाकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअली भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा जहां पे जो लिटिगेंट है उसको यहाँ पे नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव चीफ जस्टिस ने हमारे किया है जिसके वजह से बहुत लोगों को सहूलियत मिलेगी।
आप दोनों से बारी बारी से इस सवाल के जवाब में आपके रिएक्शंस जानना चाहेंगे। सबसे पहले अनुराग सर, कई लोगों के जहन में ये बात होती है और लोक अदालतों को लेकर एक मिथ भी लोगों के जहन में है कि इसमें त्वरित न्याय के लिए गुणवत्तापूर्ण न्याय की अनदेखी की जाती है, क्या कहेंगे इस पर आप?
नहीं, देखिए, जैसा अभी आपने कहा ये वाकई में एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो जजेस बैठते हैं वह बहुत ही काबिल जजेस होते हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चूंकि जो मामले इसमें आते हैं वह आपसी सुलह समझौते से ही तय किए जाते हैं, इसमें एक चीज और जो चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा वो ये कि इसमें कोई ऑर्डर इस तरीके का नहीं पास किया जा सकता जिसमें कि कोई स्पेशल डायरेक्शंस जो है वो इशू किए जाए। ये बहुत डिटेल्ड ऑर्डर्स नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी, यह मैं इससे बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भी जजेस बैठते हैं वह बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इसका जो तरीका है इस मामले को छोटे में निपटाना इसका उद्देश्य है। तो इसमें एज सच ये बात कहना कि इसमें कुछ गुणवत्ता में कमी हो सकती है यह गलत है।
युगांधरा मैम, आपका क्या अनुभव कहता है इस पर?
जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ अनुराग जी से। एक्चुअली आनंद जी मुझे ये बताना चाहिए यहाँ पे कि ये कोई कानूनी तर्क पे लड़ी गई विवाद का समाधान नहीं है। अगर आप उस चीज को खोज रहे हैं कि मुझे लॉ सेटल करना है तो ये वो प्रक्रिया नहीं है। लोक अदालत आपसी समझौते की प्रक्रिया है जहाँ पे तर्क नहीं लड़ाया जाता है, जहाँ कानून नहीं डिसाइड करता है। हाँ जजेस होते हैं, बाकी लोग होते हैं जो बताते हैं कि आज जो कानून एप्लीकेबल है दोनों पार्टीज पे तो वो है, और उसके बिना पे ये समझौता किया तो वो सबसे पास होगा निर्णय के। और लोग इसको क्यों चुनते हैं? क्योंकि ये दोनों पार्टीज के लिए एक जरिया बन जाता है, मिडिल पॉइंट जो बोलते हैं ना, जो दोनों पार्टीज आकर के एक जगह मिले। क्योंकि अगर आप चलाते रहेंगे आपका मामला तब तो सालों तक नहीं आते हैं मामले डिसीजन के लिए। और कई मामले ऐसे होते हैं, सर्विस लॉ होता है जहाँ पे आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में कोई विवाद है, ऐसे कितने बार होता है कि एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है, उनका रिटायरमेंट फंड रुका हुआ होता है, वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, उनके बच्चों को भी वो पैसे की जरूरत होती है। ये सब चीज में अगर जल्दी उसका समझौता हो जाए, एम्प्लॉयर भी आता है एम्प्लॉय भी आता है, और अगर समझौता हो जाता है तो आपको जल्दी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मगर अगर आप तर्क लड़ाएंगे, कानून पे चलाएंगे, अगर आप कोर्ट में केस पेंडिंग रखेंगे तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा उसमें अगर आप अंतर देखने जाओ तो आप उसमें क्वालिटी अगर ढूंढ रहे हैं कि क्वालिटी डिसीजन लॉ के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन, तब वो लंबा चलेगा। और वो कब आएगा, कब उसका डिसीजन होगा, वो हम नहीं बता सकते। इसीलिए क्वालिटी छोड़कर के टाइमली मैनर, और एक तो दोनों पार्टीज का समझौता, ये बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है लोक अदालत में।
जी अनुराग सर, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है और देश भर के लोग उसमें अपने अपने जो मुकदमे हैं या फिर समस्याएं हैं लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हम स्थायी लोक अदालत की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि स्थायी लोक अदालत क्या है और ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है।
स्थायी लोक अदालत का जो प्रारूप है वह बेसिकली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत ही जो है वो फॉर्म किया गया था। इसमें बेसिकली वही सारे जितने मसले इस तरीके के हैं जो कि लोक अदालत में किए जा सकते हैं वो सारे लिए जाते हैं। स्थायी लोक अदालत में एक एडवांटेज ये है कि अगर वो मसला वहां पे जाता है और यदि कोर्ट को अपनी तरफ से कुछ डिसाइड भी करना पड़े तो वह उसमें वो कर सकती है, तो ये काफी इफेक्टिव मैकेनिज्म है। और अलग अलग स्टेट्स में ये स्थायी लोक अदालत जो है वो की जाती है, नेशनल लेवल पे की जाती है, और इसका प्रोसीजर वही है जो कि बाकी लोक अदालत का है, वही प्रोसीजर इसमें भी एप्लीकेबल होता है।
अनुराग सर, कोई एक ऐसा मामला जो आपके जहन में आ रहा हो जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग रहा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं के भी कोर्ट में और वो लोक अदालत में आकर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गया और फिर वो बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना, वो अगर आपके जहन में हो तो थोड़ा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
अभी एज सच मुझे से लोक अदालत वाला तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ अभी मेरे ही एक दो मुकदमे जो काफी समय से पेंडिंग थे जिसमें कि खास तौर से जो डिस्प्यूट था वो पावर कॉर्पोरेशन से था और तमाम बढ़े हुए बिल जो थे वो भेज दिए गए थे पावर कॉर्पोरेशन द्वारा, जिसमें कि छोटे छोटे जो मिल मालिक थे उनसे बहुत परेशान थे, तो ये नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने उसको लोक अदालत के थ्रू निपटाया और वो बहुत ही जल्दी निपट गए आपसी सुलह समझौते से। तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो कि बहुत ही आसानी से और सुलह समझौते के द्वारा वो निपटाए जाते हैं।
युगांधरा मैम, आपके जहन में कोई ऐसा मामला?
आनंद जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, एक दो के बजाय मैं आपको सिर्फ आंकड़े देने के लिए ये बताऊंगी कि पहले नेशनल लोक अदालत में 1 करोड़ से ज्यादा केस का निवारण हुआ था और तीसरे में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस का समझौता हुआ था। तो आपको नंबर से पता चलता है कि कितने तरह के मामले ऐसे होते हैं जिनको जल्दी सुलझाने का मार्ग देता है ये लोक अदालत। मोटर व्हीकल्स, ये भी याद दिलाती हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट में और एक स्पेशल लोक अदालत हुआ था, जस्टिस दत्तू चीफ जस्टिस जब थे तब, और तब 300-400 से ज्यादा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर जो केसेस थे वो निपटाए गए थे। तो इतने सारे जो केसेस थे जिन पे कॉम्पनसेशन पे डिस्कशन, छोटे छोटे, अब क्या होता है ना, ये जो मोटर व्हीकल्स के होते हैं, जो एक्सीडेंट क्लेम होता है, ये घर में जो कर्ता व्यक्ति होता है उसका एक्सीडेंट होता है और उसको जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो चैलेंज किया जाता है। ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो सारे बल्क में नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनीज थी उनको बुला करके भी उनका निवारण किया था, उनको जो कॉम्पनसेशन का एक स्तर बनाया गया था कि इस एज के ऊपर के लोगों को इतना इंश्योरेंस दिया जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और वो इतने जल्दी निपट गए थे। तो मुझे एक दो के बजाय मुझे ये बताना यहाँ पे लगता है जरूरी कि यहाँ पे नंबर ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस का डिसीजन होता है। सो आप एक दो को ना देखें, बट जो क्वांटिटी है ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट इज डिसाइडेड वो देखना चाहिए यहाँ पे।
अनुराग सर, जैसा कि युगांधरा मैम बता रही थी कि इस बार जो 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक अदालत लगाई जा रही है उसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसके अलावा भी जो लोक अदालत लगती हैं या समय समय पर आयोजन किया जाता है, क्या वहां भी इन पर्सन अपीयरेंस की छूट मिलती रहती है?
जी हाँ, देखिए, जैसा कि टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात पे काफी जोर दिया है कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा जो है वो लिटिगेंट्स को हो, जहां पे उनको अननेसेसरी इधर उधर भागना ना पड़े और जहां पे भी इसकी सुविधा अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे जिलों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जहां पे अभी वहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, उन मसलों को अगर अलग कर दिया जाए तो जहां भी ये सुविधा अवेलेबल है वहां पे निश्चित तौर पे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इन पर्सन अपीयरेंस एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जहां पे कि इन पर्सन जो है वो जरूरी होता है, उन मसलों को हटा दिया जाए तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारी चीजें अवेलेबल है।
युगांधरा मैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने पहली बार बड़ी तादाद में देखा जब कोरोना महामारी चल रही थी, तो एक दूसरे से बीमारी ट्रांसमिट न हो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में मामलों की सुनवाई में तेजी देखने को मिली। अब लोक अदालतों में भी ये चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इससे भी मामलों के निपटाने में बहुत तेजी आई है?
जी बिल्कुल, ना ही तेजी आई है, आप देखिए कि कितनी सुविधा हो रही है। आज के जो पक्षकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामले होते हैं वो पूरे देश से होते हैं, गांव-गांव से होते हैं, तो हर एक आदमी को आज के दिन में आपको बिना यहाँ पे आए अगर आपके केस का सुलझ जाएगा, अगर आपको कोई उसका डिसीजन मिल जाएगा तो कितनी अच्छी सुविधा है ये। और जैसे अनुराग जी भी बोल रहे थे, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ वो इस बात को बहुत आगे बढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम पक्षकारों की सुविधा कर सकते हैं, ये उनका प्राइमरी फोकस है। और यही चीज हम अब लोक अदालत में देख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है आयोजित, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग शामिल हो सकते हैं, वैसे सारी लोक अदालत में हो, क्योंकि वहां पे भी इस सुविधा की जरूरत है।
अनुराग जी, जब हम ये बात कह रहे हैं कि 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक उच्चतम न्यायालय की तरफ से लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जो लोग बिहार में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो असम में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तमिलनाडु में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो कहां पर जाएं इस सप्ताह के दौरान लोक अदालत का फायदा उठाने के लिए?
देखिए, जितने भी मसले पेंडिंग हैं जो पक्षकार हैं उनको ऑलरेडी नोटिसेस जा चुके हैं और वो नोटिसेस जो हैं उसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है किस तारीख को आप कहाँ पे जाके ये आवेदन कर सकते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और पूरा गाइडेंस जो है वहां पे अवेलेबल है, और जहां भी ये लोक अदालत आयोजित की जा रही है वहां पे पूरा सिस्टम अवेलेबल है, और उसमें वो पार्टिसिपेट करके अपने मामले को निस्तारित कर सकते हैं।
आनंद जी, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, जो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला लेवल पे है, उन सबको भी ये नोटिस चली गई है कि ये मामले आपके जिला में पड़ते हैं और आप पक्षकार को रीच करें। तो जिसको नोटिस नहीं पहुंची है वहां पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर्स भी फोन कॉल कर रहे हैं पक्षकार को बताने के लिए कि आपका केस लोक अदालत में जाने वाला है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आप पेश हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। सो ये जो स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत ही सुविधापूर्वक और बहुत सोच समझ कर ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
कार्यक्रम के अंत में आप दोनों से आपके रिएक्शंस जानना चाहेंगे, अनुराग जी और युगांधरा मैम। आप दोनों इस बात से सहमत होंगे कि आज भी भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में लोक अदालतों को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मामला आता है, तो वो सीधा लोअर कोर्ट जाने की सोचता है या फिर हाई कोर्ट जाने की सोचता है। लोक अदालतों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए? सबसे पहले अनुराग सर।
देखिए, इसका एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत कर रही है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसमें न केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका, मतलब जितने भी जिले जो है वो इसमें आते हैं, और उन सब का एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क तैयार किया गया, एक प्रॉपर होमवर्क तैयार किया गया, और उसके बाद जो है वह ये जो लोक अदालत है नेशनल लेवल की उसको ऑर्गेनाइज की गई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और सब एक दूसरे से चूंकि इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो उससे चीजें बहुत ही सुविधाजनक हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा, वह यह बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, उसके लिए इसका पूरा प्रचार होना चाहिए, और जो मामले निपट गए हैं लोक अदालत के थ्रू उसको और प्रचारित करना चाहिए, जिससे कि लोग और आगे आएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं, जिससे कि न केवल कोर्ट्स पे भी बर्डन कम होगा बल्कि चीजें बहुत ही सुविधाजनक हो जाएंगी पक्षकारों के लिए।
युगांधरा मैम, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी?
जी आनंद जी, दो तरह के मामले होते हैं जो लोक अदालत में जाते हैं। एक जो ऑलरेडी लंबित है, जो ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, उसके लिए तो ये जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल अदालत, ये जो होते हैं ये सारे लोक अदालत उसके लिए है। एक होता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। मेरे हिसाब से उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंडर प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपलसरी है कुछ विवादों में, वैसे ही अगर आप फैमिली डिस्प्यूट या कुछ ऐसे मामले तय करें लॉ के अंडर कि ये सारे मामलों में पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन होगा, तो लोक अदालत जो कायम स्तर पे है वो उसमें जा सकते हैं और पहले वहां ट्राई कर सकते हैं। लोक अदालत अगर सक्सेसफुल करना होगा तो एक चीज की जरूरत है, पक्षकार और वकील दोनों को एक सोच में परिवर्तन की जरूरत है। निर्णय के बजाय निराकरण की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां पे हम लोग बोलेंगे निर्णय चाहिए, डिसीजन चाहिए, वहां पे एक अड़ियल सा माहौल हो सकता है, बट जहां हम रेजोल्यूशन निराकरण की तरफ जाते हैं वहां पे समझौते से आप संबंध भी जोड़े रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपके संबंध भी टूट जाए। तो ये एक सोच में अगर हम परिवर्तन करें तो काफी सारे ऐसे मामले हैं जो लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।
अनुराग सर, आपका और युगांधरा मैम, आप दोनों का लोक अदालत के विषय पर विशेष चर्चा में शामिल होने और तमाम पहलुओं पर खुलकर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार।
शुक्रिया।
थैंक यू आनंद जी।
अभी आप सुन रहे थे न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने में लोक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड युगांधरा पवार झा और अनुराग किशोर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।